الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی دو مجلسوں میں سوشل میڈیا کے ہماری زندگی پر برے اثرات اس کے تعلق سے کچھ نکات پر ہم نے غور کیا، جس میں بہت بڑی چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا ہمارا بہت سا وقت کھا جاتا ہے اور زندگی کے اہم مسائل اور زندگی کی اہم ترین چیزوں کے بارے میں ہمیں لاپرواہ بنا کر ایسی چیزوں میں مشغول کرتا ہے جن کا واقعی زندگی سے کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری عبادات میں وہ خلل پیدا کرتا ہے اور عبادات میں سے دھیان چھین لیتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ اور بھی برائیاں اس میں ہیں کہ علم نافع سے ہم کو محروم رکھتا ہے، مساجد کے ماحول کو خراب کرتا ہے اور نفع بخش علم کی بجائے ہمیں فضول باتوں میں مشغول رکھتا ہے جن کا واقعی ہمارے عقیدے سے، ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں میں مشغول کرتا ہے جو گمراہ کرنے والی ہے، ایسے دعات جو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر آدمی گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جو اب ہم شروع کریں گے، جس کا موبائل فون سے یا سوشل میڈیا سے ہماری زندگی میں جس کا نقصان سامنے آتا ہے، وہ ہے عائلی زندگی میں دوریاں۔ عائلی زندگی میں کا مطلب فیملی لائف، اور اس میں دوریاں، دوریاں کس سے؟ بیوی شوہر کی آپس میں دوری، ماں باپ اور اولاد کی آپس میں دوری، اور اس طرح سے رشتہ دار جو قریب ترین لوگ ہیں، جو ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی ان میں دوریاں۔ دور والوں سے آدمی قریب ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی بڑی قیمت انسان کو دینی پڑتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے وہ قریب والوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی، پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے اور لائکس بھیج رہا ہے، ہارٹس بھیج رہا ہے اور کمنٹس کر رہا ہے اور اس کی بات پڑھ رہا ہے، اس کو جواب دے رہا ہے، لیکن ساتھ میں گھر والے لوگ ہیں، ان کا حال کیا ہے پوچھنے کی اس کو توفیق نہیں، اور ان کے دکھ درد، ان کی زندگی کے مسائل، اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ دور کا کوئی ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہے، زیادہ جان پہچان بھی نہیں، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آمین بولنے آپ۔ ایسا ہے حال ہمارا، کتنے رسپانسو ہیں ہم لوگ، ہاں، انسٹنٹ پریکٹس سے ہوتا ہے، ایسا اپنے آپ نہیں ہوتا۔ دور کا کوئی آدمی جس سے اتنی جان پہچان نہیں ہے لیکن کوئی بیمار ہے تو فوراً شفا کی دعا کریں گے، اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا جس کو ہم نے نہ دیکھا، نہ اس کا نام معلوم، نہ پہچانتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی ہمارے شارٹ کٹس میں موجود ہے، ہاں، وہ برابر لیٹرز ٹائپ کی تو آٹومیٹک آ جاتا ہے، وہ سینڈ بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ، کی بورڈ شارٹ کٹس۔ تو ہم اتنے زیادہ اس کے لیے سوچتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، ان کو شفقت کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑی تسلی کی ضرورت ہے، ان کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیوی ہے جو پریشان ہے، اس کی دو سے تین بیماریاں ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر تھک کے سوئی ہوئی ہے، اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اولاد ہے جو چاہتی ہے کہ دین پر چلے، یا نہیں معلوم ان کو دین کیا ہے، یا نہیں چاہتی ہے دین پر چلے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو قریب کرنا، ان سے کنیکٹ ہونا اور پھر ان کو کریکٹ کرنا، اس کام میں آدمی اپنا وقت لگاتا नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में वो दावत देगा, दूर दूर बराबर मैसेजेस बनाएगा अच्छे, उसके लिए एप्लीकेशंस भी बना ढूंढ लेता है, पोस्टर बनाने वाले, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हदीस या कहीं से कुछ आ गया मैसेज फॉरवर्ड करेगा। लेकिन वही आदमी अपनी औलाद के साथ बैठकर, बेटा हमारा रब कौन है बताओ, नहीं मालूम, इसके लिए वक्त नहीं उसके पास, सालों साल निकल जाते हैं, बीवी को नहीं सिखा पाता है कि वाकई वुजू कैसे करते हैं, औरतों के मसाइल क्या हैं, या ये दीनी, आप बताइए कितने लोग हम में से हैं, ईमानदारी से गौर करें इस पर कि हम अपने घर वालों को सेंड करते हो कि ये दर्स सुनो, ये क्लिप सुनो, कितने लोग हम में से ईमानदारी से अपनी बीवी को भेजते हों, हम सारी दुनिया में भेजते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने करीबी लोगों से, दीनी रिश्ता हमारा नहीं होता है वैसा जैसा हमारा दूर वालों से होता है, क्योंकि यहाँ से लाइक्स और ये सब इतना मिलने के चांसेस इतने होते नहीं हैं, एक कैजुअल लेते हैं इसको, ठीक है भेज अच्छी बात, देखती हूँ, सोचती हूँ, सुनूंगी वक्त मिलने पर, लेकिन दूसरे दूर वाले, दूर वालों को हम बराबर भेजते हैं, क्यों, इसलिए कि हमको उनके हार्ट्स चाहिए होते हैं, उनके लाइक्स चाहिए होते हैं, थम्स अप चाहिए होता है उनका, स्टार्स चाहिए होते हैं उनके, ये जो मेंटालिटी है इसकी वजह से हमारी घरों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। देखिए आदमी सुबह उठ के काम पे जाता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता या जो भी जॉब है बिजनेस है करता, उसके बाद में शाम में घर पे आता है, बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर दोस्तों में चला जाता है कि वो तो जॉब पे था, अब बस्ती के अपने जो करीबी लोग होते हैं उनके साथ बैठता है, गप्पे शप्पे करता है, चाय पीता है, होटल में जमा होते हैं सब लोग, इधर उधर के टॉपिक, इतना वक्त निकल जाता है उसमें, रात हो जाती है, रात में घर पे आता है, घर पे आने के बाद क्या आता, खाना वाना खाता, उसके बाद निकाल के क्या क्या बाकी है पेंडिंग, तो जो उसका होमवर्क इसको बोलते हैं, ये होमवर्क है, जितने मैसेजेस पेंडिंग हैं सारे मैसेजेस चेक करता रहता है, तब तक के बीवी भी दिन भर का काम करके निढाल होके सो जाती है, अगर बेचारी वाकई समझदार है तो, और नहीं तो वो भी लेके बैठ जाती है, वो भी लेके बैठती है, चलो मेरा सारा काम हो गया, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बाकी है, सारे मैसेजेस चेक करना है, फिर यहाँ शोहर है वहाँ बीवी है, एक ही पलंग पर हैं लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर हैं, इसको इसका मालूम नहीं, इसको इसका मालूम नहीं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है, ये अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, अब जब ज़रूरत जिसकी एक दूसरे को पड़ेगी तब देखेंगे, जब तक के नहीं पड़ती तब तक नहीं, खाना पीना ये वो शहवतें अपनी सारी बात, उतना ही लाइफ है हमारी, लेकिन कभी एक दूसरे से हमदर्दी की बात, घर के हालात पूछना, एक दूसरे के बारे में बात करना, कितने हम कनेक्टेड हैं अपने घरों में, बीवियों से हम कब बैठ के फुर्सत से, वो अपना मोबाइल फ़ोन बाजू रख दी, वो बाजू रख दिया, बंद, हम लोग बात करेंगे, बीवी शोहर आपस में बात करेंगे, क्या लाना है वो भी नहीं बात करेंगे, मुझको हाँ कपड़े चाहिए, मुझको जूते चाहिए, नहीं मेरी ये डिमांड है मेरी, नहीं हम कुछ बात करेंगे, इसका तस्वीर ही नहीं कि बीवी शोहर, और मान लीजिए इसमें बच्चे भी जोड़ लें आप, अगर ठीक है मोहब्बत की बात नहीं करना है आपस में बीवी शोहर का, क्या वो हिस्सा नहीं ज़िंदगी का, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रख के कुरान पढ़ रहे हैं जबकि वह हैज़ की हालत में, इतनी क़ुर्बत के बीवी की गोद में सर रख रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, एतिकाफ़ की हालत में आप हैं, मस्जिद में रहकर आप अपने घर में कमरे में सर अपना बाहर निकाल रहे हैं, आयशा आपके सर पे पानी डाल के आपका सर धो रही हैं, कंघी कर रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा हड्डी चूस के दे रही हैं, जहाँ से खाया था उन्होंने वहीं आप मुँह लगा के आप उससे खा रहे हैं, पानी पी रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्लास दे रही हैं, जहाँ से बीवी ने पिया मोहब्बत का इजहार भी है और ये बताना भी है कि हाइजा नापाक नहीं होती है, आप वहीं से पी रहे हैं जहाँ से बीवी ने पिया, मैं तुमको नजस नहीं समझता हूँ, और उम्मत को भी मालूम हो जाए कि हाइजा औरत नापाक नहीं होती, लेकिन ये क़ुर्बत और मोहब्बत और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, किधर है, किधर है कि कोई वक्त निकाल के अपनी बीवी के साथ बैठे, बीवी कामकाज से वक्त निकाल के शौहर के साथ बैठे और आपस में बातचीत करे? नहीं। तो ये जो हमारी जिंदगी है इसमें हम लोग एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। पहले जमाने में दादा हाँ दादी घर में पोते नवासे बड़ी फैमिलीज होती थी, रात हुई छोटे छोटे बच्चे हाँ टिंगू मिंगू जितने भी होते थे सब आके बैठते थे, दादा हमको कहानी सुनाओ किस्सा सुनाओ, एक अगर वह आलिम है सहाबा के किस्से सुना रहे हैं, सलफ़ के किस्से सुना रहे हैं, अम्बिया के किस्से सुना रहे हैं, दादी है दादा है नहीं है कम से कम कछुआ और खरगोश की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन हुआ करता था। आज वो कहाँ है, आज कहाँ है, आज सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन के ग़ुलाम बने उसकी ज़्यारत कर रहे हैं, उसी में लगे हुए उसी में लगे हुए उसी में लगे हुए, हत्ता के बच्चे भी उसमें हमने लगा दिए। हमने जुर्म क्या किया, हमने अपने आप को तो बिज़ी किया उसके अंदर, हमने अपने औलाद को भी उसका ग़ुलाम बना दिया। फिर उससे आप छीनने की कोशिश करो नहीं छीनता उससे, लेकिन हमने क्यों उसको दिया मालूम, बाप जाता काम पे, बीवी रहती घर पे, अब बीवी को काम करना है किचन में, अब ये सताता है कभी खाना मांगता है कभी कुछ करता है कभी बोलता है कपड़े पहनाओ कभी कुछ और सताता है या घर में कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता है, तो हमने क्या कर दिया उसको, माँ ने क्या किया, जब तक मैं काम करूँगी ये डिस्टर्ब ना हो, इसके डिस्टर्ब ना करे इसके लिए क्या करो, इसको मोबाइल फ़ोन दे दिया कि एक कोने में ये डीएक्टिवेट होके बैठा रहे रोबोट की तरह, और वो लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है यूज़ कर रहा है यूज़ कर रहा है, उसका क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा किसी को पता नहीं, क्योंकि माँ इतना कौन ध्यान देगा भाई, एक वीडियो ख़त्म हो गया और दूसरा दूसरा तीसरा, फिर सजेशंस के अलावा भी कुछ आ रहा है तो उसको भी टैप कर रहा है, वो देख रहा है, फिर नाच रहा भी है गा रहा भी है सब देख रहा, बेहयाई भी सब उसके सामने से गुजर रही है, हम नहीं देख रहे एक दूसरे को। घर वालों की जिम्मेदारी कितनी हम निभा रहे हैं, कितना वक्त हम घर वालों को दे पा रहे हैं, क्या ये वक्त देना नहीं चाहिए? बेटी क्या कर रही है माँ बाप को मालूम है नहीं, वो बेटी लगी हुई है अपने मोबाइल में, माँ बाप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, सब अपने अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल उसका इस वक्त में क्या है, उसके अंदर कितने अफकार बातिल जमा हो रहे हैं, आज़ादी के कितने प्लान वो अपने जहन में बना रही है, बेटा दोस्तों के साथ कैसे दोस्तों के साथ उसके कनेक्शंस हैं, कैसे मैसेजेस भेज रहा है, कितने वल्गर बातें कर रहा है, नहीं मालूम नहीं मालूम, कौन झांक के किसी को देखे भाई, इसको बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है ये अपने ही मैसेजेस चेक कर ले पूरे तो उस बहुत हो गया, उसके पास दूसरों को देखने के लिए वक्त कहाँ है? तो दो नुकसान फैमिली लाइफ में बड़े नुकसान, एक दीनी एक ख़ानदानी। ख़ानदानी एतबार से हम फैमिली आज नहीं है, वैसे नहीं है कि कनेक्ट हो, कि ऐसा हो कि घर में घर का आदमी आ गया फैमिली मेंबर सब जमा हो गए, है हमारे घर में ऐसा, बताइए कितने लोगों के घर में है ऐसा, गौर कीजिए कि घर का कोई बड़ा आदमी आ गया सारे लोग अपना काम काज छोड़ के उसके साथ जमा हो गए बातचीत कर रहे हैं, आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ छोटा बच्चा बोल रहा है, बेटी बोल रही है कि आज मैंने घर ये किया, देखिए अब्बू मैंने ये बनाया खाना आपके लिए ख़ास तौर से बनाया, बेटा बोल रहा है अब्बू मेरा कॉलेज में ऐसा चल रहा है ज़रा ऐसा ऐसा हुआ आज मैं क्या करूँ, टीचर ऐसा बोल रहा था ये मसले पे बात हो रही थी तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, फिर बीवी भी आके बैठ गई हाँ हाँ अतवात पोछ के काम काज सब समेट के लपेट के आके बैठ गई है और इधर उधर की थोड़ी बात हो रही है, वो कह रहा कि फलां देखो हमारे फलां चचा बीमार हैं दुआ करो उनके लिए और सब दुआ करे अल्लाह ताला उनको शिफा दे और सब माहौल एक है, फिर ये बात कर रहा आज ऑफिस में मैं था या फलां जगह था मैं ऐसा ऐसा हुआ एक गरीब आदमी आया था हमने उसको ऐसा किए और देखो बेटा ऐसा करना गरीबों की मदद करना हमेशा, फिर बेटा बोल रहा हाँ मैंने भी आज बिल्ली को मैंने खाना खिलाया आज बिल्ली आई थी या फलाना गरीब आदमी कोई था मैंने उसको आपने मेरे को दिए थे ना खाने के लिए पैसे मैंने गरीब आदमी को दिया हाँ बेटा ऐसा करना, ये है हमारे घर में, तो क्या है घर हमारा? जब तक के आपस का कनेक्शन नहीं हो, फैमिली बाकी नहीं रहती है। हम एक दूसरे के लिए हमदर्दी का इजहार है, हमारी ज़िंदगी में कहाँ है? अगर औलाद ये मोबाइल में लगा हुआ है, औलाद अब्बू ज़रा एक बात बोलनी है तुमको, बाद में जाओ माँ को बोलो, माँ के पास जा रहा, अम्मा एक बात बोलनी मेरे को, मैं ही मिलती हूँ सारे काम से, इतना वक्त मुझको मिलता है, उसके बाद फ्री टाइम में मेरे पास थोड़ा सा बच जाता है, उनको काम नहीं है, जाओ उनके पास जाओ। तो बच्चा बोलता है ना बाप सुनता ना माँ सुनती, ठीक है दोनों को मेरे पास टाइम नहीं। तो बड़ा होने के बाद ये पुकारते उसको, बेटा इधर आओ ज़रा एक बात बोलनी है, टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस का काम है, वो देखूँ कि तुम लोगों को देखूँ मैं, उसके पास टाइम नहीं रहता। हम कितना कनेक्ट होते अपनी औलाद से कि उनकी कोई बात है उसको सुने, हम तोतली ज़ुबान में वो बोल रहा है, या बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, डांट डपट उनको हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। देखिए लैक ऑफ टाइम अग्रेशन पैदा करता है, कम वक्त में आपको कुछ करना हो तो आप गुस्सा गुस्सा होकर कुछ भी बोल देते, जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए क्योंकि आप वो सारा लंबा प्रोसेस डील, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप शॉर्ट में वो करना चाहते हैं, उसकी वजह से आपका अग्रेशन और बढ़ जाता है। तो वो टाइम कहाँ जा रहा हमारा, जिसकी वजह से हमारे अंदर अग्रेशन पैदा हो रहा है, वो टाइम हमारे मोबाइल की उसकी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है ऐसी चीज़ों में जो वाकई मीनिंगफुल नहीं है। ये मीनिंगफुल है हमारे लिए फैमिली, अल्लाह के बाद, अल्लाह के दीन पे अमल करने, इबादत वगैरह, उसके बाद ख़ानदान है। इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पर है, मर्द पर बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी है, बीवी पर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है, लेकिन किस दर्जे में इसको निभा रहे हैं हम लोग? मर्द कितना ध्यान दे रहा है फैमिली के ऊपर, चाहे वो दीनी ज़रूरत हो या दुनियावी ज़रूरत हो या इमोशनल नीड हो, क्या ये नीड नहीं है? माँ बाप बच्चों की इमोशनल नीड के लिए अवेलेबल है ही नहीं। कितने ख़ानदान हैं उसको फ़ोन पे फ़ोन आते हैं लोगों के, किसी के पास टाइम ही नहीं हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए। ख़ास करके बच्चे जब बचपन से जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं, उस वक्त में उनके पाँव फिसलने के चांसेस बहुत रहते हैं। किससे शेयर करें वो, किससे शेयर करें अपनी बातें, किसके सामने बयान करें वो? माँ बाप का औलाद का कनेक्शन ही नहीं, वो बता ही नहीं सकते, उनके पास टाइम ही नहीं, उन लोगों के पास इतने हम लोग बिजी हैं। औलाद से, बीवी से, माँ बाप से, भाई बहन से हम कितने कनेक्टेड हैं? आप किसी भी घर में जाइए, रमज़ान जैसे महीने में जाइए, इफ्तार के वक्त में जाइए और उस वक्त में सीन देखिए, प्लेट सामने रखी हुई होगी क्योंकि जल्दी बन गया सब कुछ, 15-10 मिनट बाकी है, पूरा घर किस में लगा हुआ है, पूरा घर उसमें लगा हुआ है कि हम लोग एक घर में भी हम लोग मिल के नहीं रह सकते, एक दूसरे से बातचीत करने को भी अपने पास टाइम नहीं है। हम बात कर रहे हैं उधर से, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, उससे हम चैट कर रहे हैं, जो हमारे करीब है उससे हम लोग दूर हैं, अपने को उनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कैसी ज़िंदगी है ये कि हम बिखर गए हैं, सब लोग आइलैंड्स बन गए सब लोग, हाँ यूनाइटेड आइलैंड्स, एक घर में कई जजीरे हैं, सब डिसकनेक्टेड हैं आपस में, अपने अपने सैटेलाइट्स हैं सब लोग। ये घर का तस्वीर है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसको महसूस कर रहे हैं वेस्ट में, वेस्ट में लोग बोल रहे ये गलत जा रहा, ये मामला बिगड़ रहा है। तो उन लोगों में बहुत सारी फैमिलीज अभी क्या कर रहे हैं मालूम, अमेरिका और इस तरह के जितने मुल्क हैं, मगरबी मुल्क, वहाँ वो लोग बोलते हैं घर में आएंगे ना अपना मोबाइल, हाँ तुम्हारे रूम में जाएंगे जब यूज़ करने का, जब सबके साथ रहेंगे वो बास्केट है ना, सब एंट्री करेंगे बास्केट में मोबाइल रखो अपना। कंपनीज कर रही थी ऐसा, बहुत पहले से कर रही कंपनीज, तो अभी घरों में भी हो रहा है ऐसा। घर में आएंगे डिनर टेबल पे मोबाइल फ़ोन नहीं, वहाँ पे ये रूल बना रहे हैं वो लोग, उधर रखने का, आने का, बैठने का, मिलने जुलने का, उस वक्त में कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, आपस में मिलने का, बात करने का, क्योंकि इंसान की ये जो अंदर की नीड है ये पूरी नहीं हुई इंसान अधूरा रहता है। आप बताइए, इंसान को अल्लाह ने बनाया, खलक़ल इंसान अल्लामा उल बयान, बात करने की, अब बात ही आपस में नहीं कर रहे लोग, ये घर में रह के भी गूंगे बने हुए सब लोग। बेटा जरा सुन ना, एक बात सुन। अरे मैं बोल रहा, मेरी तरफ देख, कान तुम्हारी तरफ से, बोलो ना क्या बोलना है, जल्दी शॉर्ट में बोलो लिखी। क्या कर रहा तू, थोड़ा घूर के देख तक, कुछ करूँ कि नहीं करूँ मैं, जबकि बाप ने मोबाइल दिया है, इसकी औकात नहीं मोबाइल खरीदने की, लेकिन बाप को एक बात सुनने के लिए टाइम नहीं। और दोस्त अगर फोन करे घंटों बैठा रहेगा, और बोलना और क्या चल रहा, चलो रखता मैं, अरे बैठना कहाँ जाता है, उसके पास टाइम उसके लिए है, घंटों उसके साथ बेहुदा गपशप करने के लिए तैयार है, माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उसके पास टाइम नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम लोग समझ रहे नहीं कि हमारी जिम्मेदारी भी कुछ है, हम फुल एंजॉय करना चाहते हैं, हम फुल एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम भाग रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته। तुम में से जो भी मर्द है, आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, सुपरविजन उसकी जिम्मेदारी है, सबकी निगरानी करना उसकी जिम्मेदारी, जैसे बकरियां होती हैं, बकरियों पर एक चरवाहा होता है, भेड़िया अगर उठा के ले जाए बकरियों को तो बाकी बकरियों को पकड़ा जाता है कि तुमने क्यों जाने दिया उसको, भेड़िए को कैसे ले जाने दिए, इतने रह के भी तुम लोग, 50 बकरियां थी और एक बकरी को कैसे ले गया हो, किसको पूछता है मालिक, चरवाहा जिसको दे के भेजा था, जा बकरियां चरा, उसका बकरियों का मालिक किससे पूछता है, चरवाहे से, शेफर्ड जिसको आप कहते हैं, उससे पूछता है, तेरे को निगरानी के लिए दिया था ना मैंने, ये सारी बकरियां तूने चराया और सो गया तू पेड़ के नीचे जाके, अपने खेल में लगा रहा तू, ये बकरियों में से उठा के कैसे ले गया भेड़िया। कल को शैतान हमारे घर वालों में से किसी को उठा के ले जाता है गुमराही के रास्ते पर, तो अल्लाह पूछेगा किससे, आदमी से पूछेगा जो घर का जिम्मेदार है। वर्रजुलु राई, अर्रजुलु राइन अला अहली बैती ही, घर वालों पर ये चरवाहे की तरह निगरानी करने का जिम्मेदार है। बीवी बच्चे दोनों की जिम्मेदारी इस पर है। बीवी पर जिम्मेदारी किसकी है, शोहर की नहीं है, बीवी पर जिम्मेदारी किसकी है, वलमरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा ववलदिही, शोहर का घर है, पर्दे का एहतमाम उसमें है कि नहीं है, उसमें जिम्मेदारियां पूरी हो रही कि नहीं हो रही, और उसकी औलाद, बच्चे जो उसके सुपुर्द किए गए हैं, इन बच्चों की तरबियत सही उसने की कि नहीं की, क्योंकि ये तो बाहर कमाने के लिए गया था, औरत घर में थी और बच्चों की निगरानी उसके जिम्मे थी, इसको क्या बनाया तुमने, कल को ये समाज में जाएंगे, घर की दहलीज क्रॉस करके ये समाज में जाएंगे, बड़े इंसान बनेंगे, अच्छी बनाया कि नहीं इनको तुमने, समाज में ये मुसीबत पैदा करेंगे या समाज को बेहतर बनाएंगे, ये समाज के लिए एसेट बनेंगे या समाज के लिए मुसीबत बनेंगे, औरत से पूछा जाएगा। लेकिन औरत अपने मोबाइल फ़ोन में, शौहर बीवी शौहर दोनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन में, बच्चों को भी एक मोबाइल फ़ोन दे दिए, रात दिन उसमें लगा हुआ है, वो गेम्स खेल रहा है, फिर ये कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, कार्टून देख रहा है, म्यूज़िक देख रहा है, फिर आगे बढ़ते 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 कहाँ चला गया इनको मालूम नहीं, उसको बचपन ही में वो सारी बातें मालूम हो गई जो बहुत सों को शादी के बाद मालूम पड़ती है। बच्चों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, छोटे छोटे बच्चे, उनको वो बातें उनके सामने आ रही जो नहीं आना चाहिए उनके सामने। तो ये मुसीबत जो है घरेलू ज़िंदगी में, ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आई है कि हम आपस में एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे सोशल कनेक्शन का कि जो हमारा वाकई जो फैमिली कनेक्शन है उसको ख़राब करें, क्या फ़ायदा है ऐसे सोशल कनेक्शन का। आयशा रदी अल्लाह तआला की हदीस हमने देखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उनसे कुर्बत रखते थे। सफ़र में गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा से कहा चलो आगे बढ़ो तुम लोग, हम लोग आ रहे हैं पीछे, और हज़रत आयशा से कहा चलो एक दौड़ लगाते हैं। बीवी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत करके मदीना किस उम्र में आए बताइए, नबूवत कितने साल में मिली, 40, तो कितने साल तक मक्का में रहे, हाँ 13 साल, उम्र कितनी हुई है? एटलीस्ट 53 प्लस तो है। 53 साल के बाद अपनी बीवी को सफर में लेके, क्योंकि मदीना में साथ में थे ना, तो मदीना में विदाई वही हुई ना, तो मदीना में 53 के बाद का है, अब कब का है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 53 तो है। 53 साल की उम्र में बीवी के साथ इस तरह से मोहब्बत का सुलूक कर रहे हैं, चलो दौड़ लगाते हैं, और सफ़र में आप बीवी के साथ दौड़ लगा रहे हैं। अब दुबली पत्ती थी आयशा, दौड़ी 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 तो निकल गए आगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई दौड़ के, तेज़ दौड़ के। फिर बाद में कुछ वक्त के बाद ये भारी हो गई, अब मतलब उम्र आपकी और भी बढ़ गई है। फिर सफ़र में थे और उस सफ़र में कहा आयशा चलो दौड़ लगाते हैं, चलो और दौड़े, लेकिन इस मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक ऐसी जगह थी, सहाबा को आपने आगे भेजा, सबके सामने नहीं किया, ये कोई भी नहीं, उस जमाने का देहात एकदम रेगिस्तान, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। ये नहीं कि आप अपने बस्ती में करने शुरू कर दें इसको, सुन्नत है, कोई भी नहीं देखने वाला, क्योंकि आपने क्या है यानी सहाबा से कहा तुम लोग तकद्दमो, तुम लोग आगे निकल जाओ, वो लोग चले गए आगे, ये पीछे रह गए, अब कोई रेगिस्तान में कौन देखने वाला है। उस वक्त में बीवी की दिलजोई के लिए आपने इस तरह से किया कि तुम दौड़ो मैं भी दौड़ता हूँ तुम्हारे साथ। ये रिलेशनशिप है हमारा, बीवी के साथ बैठ के बातचीत करना, या तो वो ज़रूरियात का पूरा टोकरा हमारे सामने रख देती, या फिर ये शिकायतों का टोकरा उसके सामने रख देता, तुम ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, या वो बोलती कि मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी बन के रह गई है, हम लोग काउंटर पे जी रहे हैं, है ना, काउंटर की इस तरफ ये है, काउंटर की उस तरफ वो है, तो ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट है और वो डिमांड डिपार्टमेंट है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, ये ज़िंदगी जीना है हमको। लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, बीवी थकी हुई है, बिस्तर पे लेटी हुई है थक के दिन भर का काम करके, और ये बोल रहा है ज़रा चाय दो, बहुत थकी हुई हूँ मैं, सारों का करती मेरा नहीं करती, अब शिकायत ही लेके बैठ गया वो बेचारी, दिन भर की थकी, सब खाना वाना उसी का पकाया हुआ खाया है, अल्लाह का बंदा सारों का क्या मतलब, तुम्हारा भी तो है ना उसके अंदर, तुम्हारे कपड़े धोई हूँ, तुम्हारे खाना पकाई हूँ, घर साफ की हूँ, सभी तो तुम्हारा है, मेरा क्या है इसके अंदर, मैं अपने लिए क्या की। लेकिन ये शिकायत करने बैठ गया, बजाय इसके कि उससे तसल्ली देता और कहता कि अल्लाह का शुक्र ऐसी बीवी अल्लाह ने दी कि सारा समेटती है, चलो कोई बात नहीं, एक आध चीज़ रह गई तो कोई मसला नहीं, मैं बना के पी लेता हूँ। नहीं, बीवी भी बाज़ औक़ात वो भी अपनी जगह कुछ और होती है, इसकी तरफ से ये थका हारा आया है और वो मोबाइल में बिजी है अपनी, हाँ ख़वातीन जो भी है जन्नत के साथ में बिजी हो ग्रुप में, ये इधर से जेवर डाल रही, उधर से जेवर डाल रही, वो उधर से कपड़े डाल रही अपनी, ये भी लगी हुई इसके अंदर, लाइक्स कर रही है सबको और हार्ट्स भेज रही है सबको, और शोर थका आ रहा है बाज़ औक़ात आके बोल रहा है कि खाना मिल सकता है बोले जाओ फ्रिज में से निकालो, ओवन में गर्म करो और खा के सो जाओ। बोल रहा है यार क्या ज़िंदगी होगी मेरी, इनके लिए मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, घर पे आने के बाद ये थोड़ा सा देख के कम से कम मुस्कुरा तो दे, कि इतनी डांट बॉस की सुनी है इन लोगों की वजह से, इनकी वजह से ओवर टाइम कर रहा हूँ मैं, इनकी वजह से मेरी हालत सेहत ख़राब हो रही है, लेकिन इन लोगों को ज़रा एहसास नहीं है, कम से कम मोहब्बत का सुलूक तो करे। बीवी आए, उठ के चलिए बैठिए, मुँह धो के आइए, मैं खाना आपके लिए परोस रही हूँ, खुश तो हूँ, सब मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, किससे कनेक्ट होना चाहते हैं आप लोग, किसका दिल जीतना चाहते, कौन आएगा आपके दुख सुख में। हम अपने लोगों के करीब लोग, माँ बाप का तो भूल ही जाइए, बूढ़े माँ बाप का तो भूल ही जाइए, इसमें वो तो कोने में पड़े रहते हैं अपने, उनको तो कोई गिनता भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा हैं, वो बोझ हैं, वो घर का बोझ है, हमने बोझ बना के रखा है उन लोगों को, कि इतना वक्त नहीं कि उनके पास जा के बैठे, कैसे हैं अबू जान, कैसे अम्मा जान, क्या चल रहा तुम्हारा, वो बात कर रहे हैं, कैसा रहते थे तुम्हारे बचपन में, क्या होता था, कभी पूछता है, मालूम ही नहीं इसको, अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं है, माँ बाप के बारे में उनकी ज़िंदगी का उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि जैसे बचपन से बड़ा हुआ एजुकेशन में गया, फिर जॉब में गया, फिर इसमें गया, उसमें गया, टाइम इतना निकल गया कि कभी माँ बाप के बारे में पूछा ही नहीं कि तुम्हारा हिस्ट्री क्या है, कहाँ रहते थे तुम लोग पहले, क्या करते थे तुम लोग, तुम्हारा बचपन कैसा गया, तुम्हारी जवानी कैसी गई, क्या हुआ तुम्हारा जिंदगी का, कुछ मालूम नहीं इसको, who cares? मुझे क्या पड़ी है इस बारे में, मैं मेरे इसमें इतना बिजी हूँ, मैं कंघी करने में, मेरे इसमें, मेरे मोबाइल फ़ोन में, मेरी ज़िंदगी में, इसी में मैं बिजी हूँ, मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके पास मालूम। तो हम दूर वालों के बारे में इंटरेस्टेड हैं, फलाने का क्या हुआ, फलाने फिल्म स्टार का क्या हुआ, फलाना स्पोर्ट्समैन का क्या हुआ, फलाना मंत्री का क्या हुआ, हम उसमें इतना बिजी हैं, हमारी फैमिलीज में क्या हो रहा है हमको मालूम है, बच्ची का क्या हो रहा है, बच्चे का क्या हो रहा है, इसमें ड्रग एडिक्शन आ रहा कि नहीं आ रहा, सिगरेट पी रहा है ये कि क्या कर रहा, कोई देखने को तैयार है, छुप छुपा के सिगरेट भी पीता है, दोस्तों के साथ गया था वहाँ पे इसके फेसबुक पे, हाँ शराब पीते वक्त यूं भी है, सिगरेट पीते वक्त ऐसा भी निकाला है फोटो उसने, इसको फुर्सत है नहीं है, बेटी पिकनिक पर गई थी, हाँ यहाँ से बुरका पहन के गई थी, वहाँ पैंट शर्ट पे खड़ी है दरिया के किनारे और पाइचे भी ऊपर करके खड़ी है, इसको मालूम है नहीं मालूम है, बाद वक़्त दूसरे लोग बताते हैं, अरे ज़रा ध्यान दो, तब इसको लगता है, फिर घर पे आके जल्लाद बन जाता है ये, हाँ तलवार लेके आता है, सबको कत्ल कर दूंगा मैं, तू जिम्मेदार है इसका, तो अब बोलेगा तूने इतने जमाने तक ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, तू इधर उधर सब तरफ ध्यान दे रहा था, इन पे ध्यान नहीं दिया तूने, तेरा काम था ये, अर्रजुल राइन अला अहले बैतिही, आदमी अपने घर वालों पर निगराह है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, रोजाना एक घर का निज़ाम बनाए, घर वालों को लेके बैठें, बात करें, पूरा उनका ये ना करें कि पुलिस जैसे जमा करके सबका इन्वेस्टिगेशन करता, तू क्या कर रहा, तू क्या करता, नहीं, लेकिन बैठें, उनको सुने, हमदर्दी की बात करें उनसे, शफकत की मोहब्बत की बात करें उनकी लाइफ में, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते इस वजह से, इनके पास टाइम ही नहीं, हम लोगों के पास हमारे इशूज़ उनको मालूम ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मसला जो है ख़ानदानी ज़िंदगी का बिगाड़, ये भी इस मामले में है, इसको याद रखें, नियत करें कि हम अपने घर वालों के साथ बैठेंगे, वक्त देंगे उनको, ख्वातीन भी मर्द भी, क्योंकि ऑनलाइन ख्वातीन भी सुन रही होंगी इंशाल्लाह, तो वो भी इसकी नियत करें कि हम लोग किस चीज़ के ग़ुलाम बन गए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो हम अपने औकात में से निकाल के बीवियाँ अपने शौहर के बारे में, शौहर अपनी बीवियों के बारे में, दोनों मिल के अपने फैमिली अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, जवान बच्चे हैं माँ बाप के बारे में, बैठे उनके सामने, उनके बाज़ अवकात माँ बाप तरस जाते, बच्चे बैठते नहीं उनके साथ में, तरस जाते वो लोग, अरे ज़रा थोड़ा तो बैठ, अच्छा लगता तू बैठा तो, बैठता ही नहीं, बेटी भी आई अगर तो वो भी ससुराल से आई है मायके में, वो भी अपनी वो मई ससुराल का ही चलता रहता उसका, क्या हुआ वहाँ पे, क्या खाया वहाँ पे, उधर के ही रहता, यहाँ वालों के बारे में ध्यान नहीं देती, वहाँ गई तो यहाँ फ़ोन करते रहती, शोर पे ध्यान नहीं देती, ये हालात रहते उसके। हम करीब वालों से कनेक्ट हो, दूर वालों से हो, मना नहीं है, सबसे हो भाई कनेक्ट, लेकिन ये क्या बात है कि आप दूर वालों से जुड़े हों और करीब वालों से टूटे हुए हों, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो हम अपने घरों के अंदर ध्यान दें और घरों के माहौल को सही बनाएं। नंबर 7, औरियानियत और अजनबी दोस्तियाँ, ये दोनों अलग बातें हैं लेकिन एक साथ सुन लीजिए इसको, दो अलग बातें हैं ये। एक है औरियानियत, नुमाया होने का शौक, बेपर्दगी ख़ास करके ख़वातीन के बाद में, सोशल मीडिया ने बहुत सी मुसलमान बच्चियों को बेहयाई के रास्ते पर डाल दिया, जवान बच्चियां हैं अपने सोशल अकाउंट्स बनाए उन्होंने, बाप ने हाँ पास हो गई 10वीं में 12वीं में उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, ले बेटा तेरे को गिफ्ट है, तू पास हुई ना अब कॉलेज जाएगी तू, तो तुझको क्या है मोबाइल फ़ोन तुझको दे रहा हूँ ले, काम आएगा कांटेक्ट करने के लिए, घर पे कभी देर से आ रही है कुछ भी होगा मोबाइल फ़ोन ले, तेरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। अब जाहिर बात है वो सहेलियों में मुसलमान सहेलियाँ भी हैं, गैर मुस्लिम सहेलियाँ भी हैं, कौन सा एप्लीकेशन है, अच्छा फेसबुक है, कौन सा है व्हाट्सएप है, कौन सा है इंस्टाग्राम है, अब वो देख रही है उसकी सहेलियाँ भी हैं गैर मुस्लिम सहेलियाँ भी हैं कॉलेज के अंदर, तस्वीरें डाल रही वो अपनी, नया जेवर ली हाँ उस पर फ़ोटो बना के डाल दिया, पिकनिक पे गई घर में शादी थी फुलां डाल दिया, अब इसके अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाती है। ये भी क्या करती है, आईने के सामने खड़े होकर देखती मैं कैसी दिख रही, फिर सेल्फी निकालती अपना और उसको सोशल नेटवर्क पर डालती है। फिर नीचे से कॉलेज के दूसरे लड़के होते हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, शरीफ तो नहीं डालता, बदकिरदार लोग उसको डालते हैं, क्या ज़बरदस्त है, कितनी खूबसूरत लग रही हो, और फिर ऐसे भी कमेंट्स जो एकदम बहुत घटिया किस्म के हो। बाज़ औक़ात वीडियो बनाती है, कोई गाना लगा हुआ है, गाने के साथ ये उसके साथ क्या कर रही है, लिप सिंक, कि ये होठ हिला रही है और गाना पीछे दूसरा चल रहा है, और बेहया गाना है एकदम। और फिर जाहिर बात है खूबसूरत दिखना चाहिए, तो पूरा चेहरे पर लीपा पोती करके, लिपस्टिक लगा के, हाँ काजल वाजल लगा के, पूरा पूरे जेवरात पहन के, और एकदम ऐसा कि शादी वाला ड्रेस पहनी हुई है, और वो करके उसके सामने पूरा इशारे करके सारी चीज़ें उसके साथ, कभी गा रही है और कभी डांस भी कर रही है। और नीचे घटिया किस्म के लोग, पूरी दुनिया भर के लोग उसको देख रहे हैं, और उसके ऊपर लाइक्स की भरमार हो रही है एकदम, और ये खुश हो रही है, देखो मेरे घर वाले मुझको लाइक नहीं करते, मेरी कदर नहीं करते, मुझको कुछ भी नहीं समझते, दुनिया मेरी आशिक है, दुनिया मुझको चाहती है। और फिर मेरा चैनल, मेरा जो भी YouTube हो, Instagram हो, या जो भी मेरा है, मेरा नेटवर्क ग्रो कैसा हो, कि वो सारे तमाशे करती है जो फाहिशा कस्म की औरतें करती हैं, सब कुछ उसके ऊपर बढ़ते 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 जैसा क्या होना चाहिए, फिर वो तलाश भी करती है कि अपने नेटवर्क को कैसे ग्रो करें, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, पूरी चीज़ें देखती है, फिर उसके हिसाब से पूरा अपनी जीनत मुजयन होके सब के सामने आती है बेपर्दा होकर। बाज़ औक़ात दीनदार घरानों की बच्चियाँ होती, लेकिन वो बेहयाई के साथ उस पर आके हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस करके बद अख्लाक लोगों को अपनी तरफ मोहती। कितने लोग चाहिए तुझको, कितने चाहने वाले चाहिए, क्यों, क्या फ़ायदा है इसमें, क्या चाहिए क्या तुझको, तेरा गोल क्या है, लोग चाहें तुझको क्या चाहे, मतलब अट्रैक्शन क्यों होना चाहिए तेरी तरफ लोगों को, बेपर्दगी के साथ तेरे हुस्न से लोग अपने अपनी आँखों को ठंडा करें, इसके लिए तो बेपर्दगी के साथ उस पर आ रही, नाच रही है, गा रही है, कुछ हैं ड्रामे बनाते हैं, बीविश और बेगैरत, इससे ज़्यादा बेगैरत क्या होगा, हाँ बेपर्दगी के साथ औरत भी है, शौहर भी है, और ड्रामे बना रहे हैं उसमें, बेगम ऐसा, वो बोल रही हाँ भी हाँ ऐसा, और पूरा ड्रामा बना के कुछ तो भी उस पर डाल रहे हैं, फिर चैनल जो है फैमिली चैनल है सब उसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। कभी खाना पकाने के रास्ते से आता, हेलो गाइस आज हम ये बनाएंगे खाने की चीज़, लेकिन खाने से ज़्यादा खूबसूरत ये दिख रही है, हाँ खाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पकाने वाली जो है पूरी जीनत के साथ में, किचन में ऐसा इतना खूबसूरत कोई रहता क्या, मकसद खाना नहीं है, अगर मैं ना हूं तो क्या, फिर वो अपने आप को नुमाया करना चाहती है पूरी जीनत के साथ में, वो किचन में खाना वाना बना के लोगों को बता रही है, ऐसा कोई बता रही है कि देखो गाइज, हाँ गाइज ने गर्ल्स, हाँ ये मेकअप ऐसा करते हैं, मेकअप का सही तरीका आपको बताती हूँ, जिससे आप काली भी हो तो गोरी दिखोगी, काली को भी गोरी कैसा बना सकते हैं, पहला लेयर ये होता है, दूसरा लेयर ये होता है, तीसरा चूने का लेयर ये होता है, पूरी दीवार आपकी काली भी हो तो गोरी दिखाई देगी। आदमी लोग भी कुछ कम नहीं है, आजकल मर्दों में भी मालूम नहीं क्या बीमारी आ गई है, वो लोग भी मेकअप करने लगे, मर्दों में भी मेकअप आ रहा है, बाज़ औक़ात वो दीनी तबकात में भी आ जाता है, दीन की राह से भी आता है, औरत आती आज से हम तजवीद सीखेंगे। अच्छी बात है, तो पर्दा नहीं सीखेंगे? आप तजवीद की टीचर कम लग रही हैं और आप, हाँ, न्यूज एंकर ज्यादा दिख रही हैं। वो भी कौन सी न्यूज एंकर? हॉलीवुड की। कि वो दीनी तालीम के लिए आई है, लेकिन इतनी जैब व जीनत के साथ जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं, इतनी सज धज के एकदम वो आके कुरान की तजवीद तू सिखाएगी, उस पर ध्यान कौन देगा? वो तेरे पर ध्यान देंगे। कहाँ जा रही है तू? मुसलमान औरत है, कहाँ जा रही तू? कि वो दीन सिखाने के नाम पर अपने आप को मुजयन कर रही है, वो चाह रही कि लोग उसको देखें, लाइक मैं ऐसे दिखना चाहिए एकदम एकदम लोगों को, लोगों की निगाहें हैरत से देखती रह जाए मुझको खूबसूरती के साथ में। बाज़ औक़ात मर्दों में भी आ जाता है, आप देखिए यहाँ से लाइट होनी चाहिए, वहाँ से लाइट होनी चाहिए, अब ये गोरा नहीं बेचारा क्या करेगा, पैदा ही ऐसा हुआ है। तब क्या करता है वो पूरा उसके लिए पसीना चमकता है, यूं होता है, फलाना ढिमाका जो होता है, उसको सारे जितने भी हैं स्टूडियो में गोरा बनाया उसको सबने मिलके, और होंठ पे लिपस्टिक भी लगाते। अरे नहीं, औरतों की नहीं, ये मर्दों की लिपस्टिक है। हैं, मर्दों की लिपस्टिक क्या है ये? कहाँ जा रहे हैं हम लोग कि दीनी मैदान में भी ये होने लगे? ये सारी चीज़ें बीमारियां हैं, बेहयाई और यानियत ये अच्छी चीज़ नहीं। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से फरमाता है, वकर्न फी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुज الجاهلیۃ الاولی। सूरह अलहज़ाब में आयत नंबर 33 में अल्लाह ने फरमाया, अपने घरों में बैठी रहो, वकर्न फी बुयूतिकुन, अपने घरों में बैठी रहो, वला तबर्रजन तबर्रुज الجاهلیۃ الاولی। आपके नोट्स में नहीं है, वला तबर्रजन तबर्रुज الجاهلیۃ الاولی। पिछली जाहिलियत में जैसे औरतें अपनी जीनत का मुजाहरा करती फिरती थी, तुम अपनी जीनत का मुजाहरा नहीं करना, अपने आप को इस तरह से जो है बेपर्दगी के साथ में समाज में घूमती फिरती थी पहले औरतें, तुम वैसा मत करना। अल्लाह ताला ने तबर्रुज को हराम कर दिया है कि औरत अपनी जीनत का इजहार सारी दुनिया में लोगों में करती फिरे, नहीं। आप देखिए एक औरत बाजार से गुजर रही है, इतना भयानक नहीं है जितना एक औरत इंटरनेट पर आ रही है। ये एक 50-100 हज़ार लोग देखेंगे उसको, और इतने ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं क्योंकि सब अपनी सब्ज़ी तरकारी खरीदने में लगे हुए हैं, लेकिन इंटरनेट पर आएगी वो शेयर होगा, शेयर होगा, शेयर होगा, दुनिया में हज़ारों लोग उसको देखते हैं, इससे ज़्यादा लोगों में वो बेपर्दगी के साथ आएगी, सबका गुनाह इस पर रहेगा, सबका गुनाह इस पर रहेगा अगर उनके जज्बात को ये भड़काती है तो। और बेपर्दगी का गुनाह तो खुद अपनी जगह बाकी है, वो एडिशनल गुनाह होगा कि समाज में बेहयाई फैलने का ज़रिया बने। नंबर 3, अगर दूसरी बच्चियाँ, दूसरी औरतें इसको देखकर जवाज़ फराहम करती अपने लिए कि देखो वो भी तो करती है ना, तो मैं भी करूँगी, तो उसका गुनाह भी इसके ऊपर आएगा। 3, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, काबिल, काबिल ने अपने भाई हाबील का कत्ल किया था ना, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे, तो क्या फरमाया, क़यामत तक जितने कत्ल होंगे इन सब का गुनाह काबिल के ऊपर जाएगा। क्यों? वो पहला है, वल अव्वल मन सन अल कत्ल, वो पहला है जिसने कत्ल की बुनियाद डाली, कत्ल की सुन्नत ईजाद की, कत्ल का तरीक़ा ईजाद किया। तो अगर तू लोगों के लिए बुराई का उसवा बनती है, तुझको देखकर जितने लोग उस रास्ते पर चलेंगे उन सब का गुनाह तेरे नामे आमाल में होगा, क्योंकि तेरी वजह से वो लोग इंस्पायर हुए हैं। क्यों इतनी बड़ी मुसीबत मोहल्ले का औरत, बेपर्दगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम ईमान वालों की औरतों से कहिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, अपने जिलबाब को अपने ऊपर डाल लें, लटका दें, यानी अपना पर्दा इख्तियार करें। जिलबाब जो है इस तरह से ऊपर सर पे डाला जाता था और वो घूंघट की तरह निकाला जाता था, यानी अपने आप को छुपाएं। اپنے آپ کو چھپائیں, وہ اپنے چہرے کو, اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہ کریں. ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین, یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ پہچان لیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. پردے والی ایک دم ایسی عورت جو اسٹرکٹ ہو, کوئی چھیڑ خانی اس کے ساتھ کرتا نہیں کرتا, لیکن ایک بن سنور کی عورت نکلے راستے سے اور راستے سے چلے اور ادھورے لباس میں جائے, لوگ پلٹ کے بھی دیکھتے ہیں اور کوئی سیٹی بھی مارتا ہے اور کوئی اس کے اوپر کمنٹس بھی کرتا ہے. لیکن ایک پردے والی عورت جو اپنے آپ کو چھپاتی ہو, اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہو, اپنے وقار کو سنبھال کے چلتی ہو, لوگ بھی بولتے ہیں بھائی یہ وہ عورت نہیں ہے, چھوڑ دو, اس کے پیچھے مت پڑو, یہ شریف گھرانے کی شریف النفس عورت ہے, چھوڑ دو اس کو, بہت بدتمیز قسم کا آدمی ہوگا, بدبخت ہوگا جو اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا, لوگ بازو رستہ دیتے بھائی جاؤ بہن جی آپ جاؤ, لیکن جو ایک دم سج دھج کے آئے گی ادھورے کپڑوں میں, اپنی زینت کا مظاہرہ کر کے پوری بیوٹیفیکیشن کے ساتھ میں, تو لوگ کیا میسج لیتے ہیں, یہ چاہتی ہے کہ لوگ دیکھیں, اس کو چاہیے کمنٹس, اس کو لائکس چاہیے, تو ہم دیں گے, لوگوں کے پاس ہے, لوگوں کے پاس ہیں, لوگ کمنٹ بھی کریں گے, سیٹی بھی ماریں گے, لوگ تعریف بھی کریں گے اس کی. تو پردے والی عورت, اللہ نے فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا کہ وہ کیا کریں, جلباب اپنے اوپر ڈال لیں. بتائیے امت کی مائیں ہیں وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں, مسلمانوں کی ماں ہیں, تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم کیا کرو, جلباب پردہ کرو. بتائیے جن کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے, اگر وہ میڈیا میں آئے عورتوں مردوں کے سامنے اور ایک دم مزین ہو, مزید اس میں یہ کہ باتیں بھی لچک لچک کے کریں, تو کیوں نہیں لوگ ان کے اوپر کمنٹ کریں گے, اور کیوں نہیں سماج میں گندگی پھیلے گی, کیوں نہیں سماج بگڑے گا, کیوں نہیں بے حیائی عام ہوگی, اور کیوں نہیں ان کے پیچھے دوسری بچیاں بھی اسی راستے پر چلیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین اس طرح سے عریانیت یا نیم عریانیت یا تبرج کا شکار ہو کر سماج میں غلط راستے کو فروغ دیں, بے حیائی کو فروغ دیں. حدیث میں کہ ایمان اور حیا دونوں کی جوڑی ہے, الایمان الحیا والایمان قرنا جميعا, دونوں کی جوڑی ہے, اذا رفع احدهما رفع الاخر, دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایمان اور حیا کی, شرم و حیا کی جوڑی ہے, دونوں میں سے ایک کو بھی اٹھا لیا جائے دوسرا جاتا, اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی چلا جاتا اس کے پیچھے. بے حیائی ایمان کا بگاڑ لاتی ہے, بے حیائی ایمان کا بگاڑ لاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بچیاں سوشل میڈیا کے راستے سے ارتداد کے راستے پر چلی گئی, نہیں بہت ساری بچیاں, آپ دیکھیے کیس اسٹڈی کر لیجئے, پوچھئے علاقوں میں جائیے, فلانی لڑکی فلانی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی, لڑکا مسلمان تھا نہیں, ہاں تھا کبھی نہیں بھی تھا, کیسا ہوا ایسا, ارے کیا بتائیں بھائی, موبائل فون پہ ان کا چلتا تھا, کنیکٹ ہوئے, فیس بک پہ ہوئے, واٹس ایپ پہ ہوئے, اتنا ہوتے 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 بات چیت ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ملے ملے مل کے پھر اور محبت ہوئی, عشق ہوا, دونوں گھر چھوڑ کے نکل کے چلے گئے. اتنا ہی نہیں, یا پھر ایسا ہوا کورٹ میں گئے, دونوں نے مل کے شادی کر لی, مسلمان بھی نہیں تھا یہ یا مسلمان تھا, بتائیے. یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے, ہم اس کی سازش اس کی سازش اس کی سازش کرتے, سازش ہمیشہ رہے گی, سازش ہمیشہ رہے گی. بھائی آپ کے گھر میں پانی ٹین کا آپ کا چھت ہے, پانی ٹپکتا ہے, آپ کیا کرتے, بارش کی شکایت کرتے, آپ کیا کرتے, آپ ہاں اس سوراخ کو بند کرتے نا, آپ سوراخ کو بند کرو, آپ بارش کو نہیں روک سکتے, سمجھ میں آ رہی میری بات, آپ بارش کو نہیں روک سکتے, آپ جو سوراخ آپ کی چھت میں ہے, آپ وہ سوراخ بند کرو, پانی نہیں آئے گا گھر میں. مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہمیشہ سے چلتی رہیں اور رہیں گی, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी क्या है, आपका हिफाजती इंतजाम क्या है, वायरस आते रहेंगे, आपके पास एंटीवायरस सिस्टम है कि नहीं है? आप उनकी शिकायत नहीं कर सकते कि वायरस क्यों बनाए इन लोगों ने, आपके पास एंटीवायरस है, आप इस्तेमाल करो उसको। आपका सिक्योरिटी, चोर आता रहेगा, आप घर खुला छोड़ दिया और बोल रहे चोरी हो रही इस इलाके के अंदर, अल्लाह के बंदे तेरे पास ताला था, लगाया क्यों नहीं घर के लिए, कुंडी लगाया क्यों नहीं तूने, घर में जानवर घुस गया, खिंजीर घुस गया तेरे घर में, तो शिकायत कर रहा है, दरवाज़ा खुला कौन छोड़ा, समझ में आ रही मेरी बात, दरवाज़ा खुला तूने छोड़ा और शिकायत तू कर रहा है कि मेरे घर में खिंजीर और कुत्ता कैसे घुस गया, तो दरवाज़ा कुंडी लगाता नहीं आता हो। तो हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, हम उस पर बहुत डिस्कस करते, कुछ करना पड़ेगा, हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा, मुसलमानों को कुछ करना पड़ेगा, उलमा को कुछ करना पड़ेगा, लीडरों को कुछ करना पड़ेगा, तू सोया रहे, तू कुछ मत कर, और करेगा तो क्या करेगा, एक जुलूस निकालना चाहिए इसके लिए, जुलूस निकाले तोड़े फोड़े फिर 50 लोगों को और अंदर बिठा के लेके गए, हाँ वही होगा ना। करने का काम क्या है, हम घरों पर ध्यान दें, एजुकेट करें, सॉल्यूशन क्या है इसका, एजुकेट, तरबियत कीजिए सही, अपने बच्चों की अपनी बच्चियों की तरबियत की, एक नंबर एक एजुकेट करना, दो उनको शफकत देना। आपके घर में मोहब्बत नहीं मिली इसलिए बाहर ढूंढ रही हो, घर में मोहब्बत नहीं मिली इसलिए बाहर ढूंढ रही हो, तो घर का माहौल सही करना। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, मुशरिक औरतों से निकाह मत करो जब तक कि, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, ठीक है पहले मुशरिक थी कोई, अब मुसलमान हो गई, कर सकते हैं, मुसलमान से ही निकाह होगा। और वला अमतु मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, और एक मोमिना बांदी ज़्यादा बेहतर है एक मुशरिका से जो आज़ाद हो, वलौ अअजबतकुम चाहे वो तुम्हें कितनी अच्छी लगे, कितनी तुम्हें लुभाए। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और अपनी बच्चियों का बेटियों का जो भी रिश्तेदार हैं उन औरतों का निकाह किसी मुशरिक से मत करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, एक गुलाम मोमिन ज़्यादा बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक से चाहे वो तुमको कितना ही अपनी तरफ मुतासिर करे, अपनी तरफ कितना ही अट्रैक्ट करे, कितना ही अच्छा लगे तुमको। ओला क्यों ऐसा, क्यों नहीं करना है मुशरिक से निकाह चाहे मर्द हो या औरत हो, ओला इक यदऊना इलन्नार, ये इसलिए कि वो जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। अंजाम किधर है उसका, क्या है, जहन्नम। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फिरति बिइज़्निही, और अल्लाह तुमको अपनी जन्नत की तरफ और अपने हुक्म से अपनी मग़फिरत की तरफ दावत देता है। व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतदक्करून, और वह अपनी आयतें तुम्हें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम लअल्लहुम यतदक्करून, वो आयतें लोगों के लिए वाज़ह करके सुनाता है ताकि वो नसीहत लें, नसीहत लें। सूरतुल बकरा आयत नंबर 221। तो इन आयात में आप देखें, इस आयत में आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि मुशरिक से निकाह नहीं होता है, लेकिन चूँकि घर की तरबियत नहीं होती है और बच्चियां सोशल मीडिया पर चली जाती हैं, बल्कि बच्चियां क्या, बच्चे भी नौजवान भी हैं और ये नौजवान ज़्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं। इस्लाम से इनको कोई लेना देना नहीं था, फलाना लड़का था कॉलेज में लड़की के साथ पढ़ा, वो गैर मुस्लिम थी, अब इन दोनों का इश्क हो गया, प्यार मोहब्बत हो गई, इस सोशल मीडिया के ज़रिए से हो या मुलाकात के ज़रिए से हो, कभी कभी तो एक शहर के भी नहीं रहते दोनों, दोनों का दिल एक दूसरे पर आ गया, अब न ये इस्लाम पर है न उसको इस्लाम से कुछ लेना देना है, लेकिन बस निकाह करने के एतबार से दोनों इश्क में एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, नाम के मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से समाज में लव जिहाद के नाम पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जितने भी हैं हाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ करने वाले, पूरा उसको पूरा बना लेते कि देखो हमारी बच्चियों को ये लोग क्या कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे बेवकूफ़ बनाकर ये लोग मुसलमान बना रहे हैं और मालूम नहीं क्या करना चाहते, इनकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं, ये ख़ुद मुसलमान ढंग का नहीं होता, इसको मालूम भी नहीं होता इस्लाम क्या है, लेकिन फिर क्या करता है ये, اپنے سپورٹ کے لیے سارے لوگوں کو ساتھ میں لیتا، دیکھو میرے خلاف مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایک پانچ وقت کی نہ نماز کو آتا ہے، نہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، اور شادی ہو بھی جاتی ان کی تو بس اسلام کے نام پر ہوتی، لیکن دونوں اسلامی زندگی گزارنے والے بھی نہیں تھے، دونوں کو لینا دینا ہی نہیں تھا کچھ اسلام سے، لیکن بس بعض اوقات اس وجہ سے بھی مسلمانوں کی ہمدردی لے کے ان کو جھونک دیتے پالیٹکس کے اندر، ہماری طرف سے تم لڑو، لیکن یہ خود اسلام شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، خود اسلام پہ جمنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہیں اس بارے میں۔ مسلمان بچیاں کیا کم ہیں بتائیے، آپ ادھر ادھر جا رہے کالجز میں، کمپنیوں میں اور مالز میں، کیونکہ اس کو بھی ویسی چاہیے ماڈرن، گھر میں بیٹھی ہوئی بچی ہے مسلمان، اس کا نکاح اس کو وہ نہیں چاہیے، اس کو کیسی چاہیے، اس کے ساتھ کلب میں ناچنے والی چاہیے، خالی اسلام چونکہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے اسلام کام آ رہا وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قاضی کے بغیر مستحی ڈھنگ سے اسلام میں نکاح نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو زبردستی مسلمان کسی طرح سے بنا کے کرے کوئی آدمی، غلط، ایسا نہیں کر سکتے، اور نئی مصیبت کھڑی کر کے نہیں لا سکتے اس طرح سے۔ مسلمان بچیاں کتنی ہیں، آپ کو وہ نہیں چاہیے، ان سے نکاح کر کے آدمی، دیکھیں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اپنی خوشی سے بغیر کسی کے دباؤ سے، ایک اور بات ہے، وہ بھی ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے قانونی معاملات ہوتے ہیں، سب آدمی ڈیل کر کے سارا جو بھی معاملات ہے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی صرف اپنی خواہش کی وجہ سے اس کو زبردستی مسلمان بنائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھیے، فرق کو یاد رکھیے اس کو، اس کی وجہ سے بکھیڑا بہت کھڑا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی ساری مسلمان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ تو اب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی اپنے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ کو گوارا ہے یہ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آلریڈی بچیاں زیادہ ہیں، رشتے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، نہیں مل رہے ہیں ان لوگوں کو، ادھر سے ڈیمانڈ، ادھر سے ڈیمانڈ، ہم کو کچھ چاہیے نہیں، لیکن آپ دیں گے تو لیں گے، کتنی شرم کی بات ہے، پھر کیوں نہیں دیں گے ہم؟ آپ اتنا جب منہ کھول کے بول رہے ہیں مگرمچھ کی طرح سے، تو ہم کیوں نہیں دیں گے؟ پھر مجبوراً باپ کو دینا پڑتا ہے، اور بول رہے تو صحیح اشارے میں کہ دیں گے تو لیں گے، تو نہیں دیں گے، ابھی اتنا بولنے کے بعد تو ہماری بچی کو ستائیں گے سسرال میں، ظلم کریں گے اس کے اوپر کہ تو کیا لائی، کچھ بھی نہیں لائی، تو لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں کہ ہمارا فیوچر صحیح نہیں ہے، اور دیکھیے اس وجہ سے وہ جاب پہ لگتی ہے، کہ ہم کو مارکیٹ میں ہمارا بھاؤ نہیں جب تک کہ ہم لوگ کچھ پڑھے لکھے نہیں رہیں گے، دیندار کو کون دیکھتا ہے زیادہ، کمانے والی چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے، تو پھر وہ پڑھتی لکھتی ہے، کمانے لگ جاتی ہے، کمانے جب لگ جاتی ہے اور اچھے مارکس لے کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ لڑکا تو کرکٹ کے میدان میں، فٹ بال کے میدان میں گھومتا رہتا ہے مسلمانوں کا، لڑکی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھ لکھ کے اچھی بن جاتی ہے، پھر جاب پہ بھی لگا دیتا باپ اس کا، اب بیٹھ کے کیا کرے گی، وہ بھی سوچتی ہے میں بیٹھ کے کیا کروں گی، تو کچھ کما لیتی ہوں تاکہ میرے نکاح کے لیے باپ نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا باپ، میں خود کما لوں گی کچھ۔ اب جب جاب پہ جاتی ہے تو اس کو وکی مل جاتا وہاں پہ، جب جاب پہ جاتی ہے وہاں پہ اس کو ویسا مل جاتا ہے، تو اب اس کے ساتھ میں وہ اس کو جاب پہ لگاتا ہے، اس کو گھر پہ ڈراپ بھی کرتا ہے اور اس کو ہیلپ بھی کرتا ہے جاب میں، صحیح گائیڈ لائنز دیتا ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، یہ مسلمان نہیں وہاں پہ، اب وہاں پہ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب اتنا ہیلپ کوئی کرے گا تو دل نہیں آئے گا اس کے اوپر، آئے گا، پھر دھیرے دھیرے دونوں میں خاموش ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کرنے لگتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں، اس کا دل لگ جاتا ہے، یہ بچی بولتی ہے اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور اتنا شریف ہے، اچھے گھر کا ہے، پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، پھر مسلمانوں میں دیکھتی، مسلمانوں میں اس کو ایسا کوئی ملتا نہیں، الا ماشاء اللہ ہوتے ہیں بچے، لیکن ایسا، اور جہاں ہوتے ہیں وہاں ماں باپ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دہیج مل چاہیے ہم کو، اتنا ہم کو ایسا چاہیے ویسا چاہیے، اور وہ بھی اتنا زیادہ بہادر ہوتا نہیں، میں تو نہیں لینا چاہتا لیکن کیا کروں، میرے ماں باپ ہیں نا، سنتے نہیں وہ لوگ، پرانی خیالات کے ہیں، تو یہ بھی اتنا نامرد ہوتا ہے، ہاں ہم کو مردوں کی ضرورت ہے اس امت میں، نامردوں کی نہیں، کیسا آ کے بولتا مولانا صاحب मैं तो नहीं लेना चाहता दहेज और मैं ये नहीं चाहता, सादा निकाह करना चाहता, लेकिन माँ बाप बहुत बोझ डाल रहे हैं, बहुत टेंशन दे रहे हैं, तो अगर मजबूरन ऐसा करें तो मतलब निकाह तो हो जाता ना। निकाह हो जाता है लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन निकाह होता तो सही ना। हाँ, लेकिन क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, नहीं सुन रहे घर वाले, नहीं सुन रहे घर वाले, बोले तो क्या आलिम ये बोलेगा, तू बेनिकाह रह जा, घर छोड़ के निकल जा, क्या बोलेगा आलिम? आलिम बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन वही लड़का अगर माँ बाप उसकी काली कलोटी और एकदम हाँ अंधी लड़की से शादी करेंगे, बोलेगा मैं तो नहीं करना चाहता था लेकिन माँ बाप ने कर दी, करेगा? इसके अंदर चोर होता है, ये बेगैरत होता है, ये बुजदिल होता है, इसलिए वो तैयार होता है। लंगड़ी लूली से कर देंगे शादी, करेगा? मैं तो नहीं करना चाहता था लेकिन माँ बाप करे, सुन रहे नहीं अभी, क्या करूँ मैं, ठीक है काजी साहब मैं तैयार हूँ, बोलता? इसकी अपनी एक लिमिट रहती है, उसको मालूम है कहाँ एकदम बागी बन जाना है, इसके अंदर जीना आ जाता है, जब अगर उसकी पसंद का नहीं रहेगा तो करेगा जबरदस्ती, ले बेवा है इससे कर निकाह, चार बच्चे भी इसके तुझको संभालना, हाँ करेगा? वहां नहीं बोलेगा मैं समझा रहा लेकिन वो सुन रहे नहीं माँ बाप मेरी, अभी क्या करूं मैं, बोलता है ऐसा? नहीं बोलेगा ऐसा, वहां उसके उसका पूरा हाँ उसके अंदर से निकलेगा, पूरा जिन निकल जाता उसके अंदर से, कुछ भी करो मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं भाग जाऊंगा, हाँ मिलूंगा भी नहीं तुमको, मैं सब बोलना शुरू करता है। तो कहाँ गैरत मर जाती है? अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, हमारी बच्चियों के निकाह कैसे होंगे? नियत करें जिनका निकाह नहीं हुआ है कि हम सादा निकाह करेंगे और दीनदार बच्चियों से हम निकाह करेंगे, चाहे वो खूबसूरत ना हो। हाँ ये भी है, खूबसूरत होना, पैसे वाली होना, पढ़ी लिखी होना, तू है क्यों वैसा, आईना देखा है तूने? सिर्फ तू लड़का है इसलिए तेरी इतनी सारी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं। कभी लड़की वालों से भी पूछा है कि उनकी कंडीशंस क्या है, तेरे अंदर क्या है ऐसा? याद रखें, समाज में बेहयाई फैलने के असबाब में से ये है कि हम बेवजह की कंडीशंस निकाह के लिए रखें, बेवजह की, और निकाह को मुश्किल करें और जिना को आसान कर दें, और नतीजा ये होगा कि हमारी बच्चियां ऐसे लड़कों के साथ में लुच्चे लफंगे हाँ बाइक पे आके कॉलेज के आसपास घूम रहे पूरे एकदम, और लड़कियां आ रही हैं, फिर उसको फूल फेंक के मार रहा है, फिर वो मुस्कुरा के देख रही है उसको, और फिर उसको बोल रहा है चलो मेरे साथ, और बैठ के जा रही है उसके साथ में। चाहिए आपको ऐसा? आप गौर करें तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए कि हमारा पूरा निज़ाम जो है निकाह वाला, इसका बिगाड़ ख़त्म हो। प्लस ये जो सोशल मीडिया का फितना है, इससे हम बच्चियों को खबरदार करें, बच्चों को खबरदार करें, इनको अजनबियों के साथ दोस्तियां कायम करने से रोकें। अजनबी दोस्तियां बड़ी मुश्किल हैं, इससे बड़े नुकसानात होते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको याद रखना ज़रूरी है। मज़ीद बातें इंशाल्लाह हम लोग चाय के बाद असर की नमाज, असर की नमाज के बाद हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद बातें देखेंगे। أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.